हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वाहवा। जिह्वे बिभर्स्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धर माधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, अर्थात जब गजेंद्र संकट में आए तो वो किस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमने देखा गजेंद्र विभिन्न प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते जा रहे हैं और भगवान की इन विशेषताओं का वर्णन करते करते भगवान से कहते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, तो कृपया मुझ जैसे दीनहीन जीव पर कृपा करो, मुझे अपने संरक्षण में दो। गजेंद्र बार बार भगवान से यही कह रहा है कि क्योंकि आप परात्पर हैं, आप पर से भी परे हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी यदि कब कष्ट आता है तो वो आपकी शरण में आते हैं, तो इसलिए मैं समस्त सहारों को छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि आप ही इस सृष्टि के संहार करता हो, आप ही सृजन करता हो, आप तो साक्षी बनकर देखते रहते हो, क्योंकि आपका धाम तो चिन्मयी धाम है जिसका कभी क्षय नहीं होता और वहां पर सदैव लीला करते रहते हो। और वो कैसी लीला करते हो कि किसी को समझ नहीं आता, कोई भी आपकी इस लीला को समझ नहीं सकता। उसके विषय में आज गजेंद्र भगवान से कह रहे हैं श्लोक नंबर 6, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नायस्य देवा ऋषय पदम विदु जन्तु पुनकोर हतिमन गन्तु मीरितुम यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु। नायस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः को हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु। नायस्य देवा ऋषय पदं विदु जन्तु पुनः को हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमण समावतु। गजेंद्र कह रहे न यस्य देवा, न मतलब नहीं, यस्य उस भगवान को, जिस भगवान की शरण में मैं जा रहा हूँ उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, न यस्य देवा कि जो देवता है, जो उच्च लोक के वासी हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, वास्तव में इस भौतिक जगत के मनुष्य से करोड़ों गुना अधिक है देवताओं का सौंदर्य, देवताओं का ऐश्वर्य, देवताओं का ज्ञान, देवताओं की बुद्धि, देवताओं की आयु। परंतु फिर भी गजेंद्र बता रहे न यस्य देवा, वो देवता जो इतने उच्च हैं मनुष्यों से, वे भी नहीं जानते हैं भगवान को, भगवान के पद को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के धाम को, भगवान की लीलाओं को वो नहीं जान सकते। और नहीं जान सकते ऋषयः, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं, परंतु फिर भी पदम विदु, वो पदम का मतलब होता है भगवान का पद, भगवान के चरण कमल के विषय में, भगवान के स्वरूप के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भगवान की लीलाओं के रहस्य के विषय में, भगवान के शब्दों के विषय में, भगवान की महानता के विषय में कोई नहीं जानता, ना देवता, विदु मतलब जानते, ना देवता जानते हैं, ना बड़े बड़े ऋषि जानते हैं। तो फिर जंतु पुनः कौर हति, जंतु का मतलब होता है ये जंतु, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य होकर भी मृगार चरंती, पशुओं जैसे कार्य करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में अपना समय बिताते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, फिलोसोफर बन जाते हैं, और भगवान के ऊपर चर्चा करने आते हैं कि भगवान हो ही नहीं सकते, यह संसार तो बाय चांस बना है, ये कोई भी भगवान है नहीं, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, और अगर है तो कृष्ण नहीं है, है ना। तो भगवान गजेंद्र बोलते हैं, जंतु पुनः को हति, ये जंतु ये मनुष्य के रूप में जो पशु हैं, वो भला कहाँ से समर्थ हो सकते हैं, ये जंतु भला क्या जानेंगे, जबकि देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये मानव को वास्तव में यहाँ पर जानवर कहा गया है, कि मानव जो जानवरों के जैसे कार्य करता रहता है और सोचता है कि भगवान क्यों नहीं समझ में आते, उसे भगवान भला कैसे समझ में आ सकते हैं। तो वे कहते हैं गंतुम ईर हितुम, गंतुम का मतलब होता है कि वो कैसे जान सकता है, और ईर हितुम का मतलब होता है भला कैसे वर्णन कर सकता है। एक तो वो भगवान की शरण में नहीं गया, भगवान को सरेंडर नहीं किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो फिर भला वो भगवान को कैसे जान सकता है, क्योंकि भगवान को जानना इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है। सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फूर्त्यदा, ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है भगवान। भगवान को हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते, भगवान के पद को, भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं। सेवान मुखे ही जिह्वादो, जब हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में जाते हैं और उनसे श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का भजन करते हैं, तो फिर ही हम भगवान को समझ सकते। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ना तो भगवान को देवता समझ सकते हैं, ना ऋषि समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को समझा जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान को समझा इनके द्वारा नहीं जा सकता, देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। जैसे कोई भी शब्द जब शास्त्रों में लिखा होता है तो उसको बहुत गहराई से लेना चाहिए। जैसे कहीं किसी दरवाजे पर लिखा हो नो एंट्री, कि इससे आप इंटर नहीं हो सकते हो, तो यहाँ प्रश्न उठता है ना कि जब यहाँ से इंटर ही नहीं हो सकते तो फिर ये दरवाजा बनाने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर दीवार बना देते। नहीं, नो एंट्री फॉर एवरीवन, है ना। वहां से कुत्ते नहीं गुजर सकते, वहां से सुअर नहीं गुजर सकते, वहां से साधारण पशु और साधारण जंतु नहीं गुजर सकते, परंतु कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है। तो नो एंट्री किसके लिए है, जो साधारण है, और जो स्पेशल लोग हैं वो वहां से आसानी से जा सकते हैं। उसी प्रकार न यस्य विदु का मतलब ये नहीं है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, लेकिन भगवान को साधारणतया देवता ऋषि भी नहीं जान सकते, तो फिर यह मानव जो जिसको जंतु कहा गया वो भला भगवान को कैसे जान सकता है, क्यों नहीं जान सकते। यथा नटस्य कृतिभिर्वचेष्ट, तो कि जिस प्रकार नट का मतलब होता है जैसे नाटक कला करते हैं, जो भरतनाट्य वगैरह करते हैं ना, तो वो पता नहीं चल रहा होता है कि वो वास्तव में कौन है, उनको नहीं जान सकता कोई भी, लेकिन वो कार्य कर रहे होते ना, जैसे दशा अवतार का यदि वो नाटक करते हैं तो ऐसा अद्भुत तरीके से कर रहे होते हैं। जब नरसिंह अवतार का होता है तो एक नरसिंह बनता है, उसके नाखून इतने हिला रहा होता है, अपने आप को नाखूनों से जोर से हिरण्यकश्यपु के पेट खोलता है और उसमें से कुछ अंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल रहा होता है। और इसके अतिरिक्त जब वराह भगवान का आता है तो वराह भगवान जो है वो समुद्र में से धरती को निकाल के अपने दांतों पे लेके आते हैं। कभी मत्स्य अवतार का करते हैं तो कभी वामन अवतार बहुत ही सुंदर रीति से दिखाते हैं कि किस प्रकार से तीन पग धरती भगवान मांगते हैं और एक पग महाराजा बलि के से परखते। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं, अगर किसी को नई खबर हो पहले से ही, ठीक है, किसी ने सुनी नहीं हो, किसी को पता ना हो, और अचानक से ऐसी लीलाओं के दर्शन उसको करने को मिले, ऐसा नाटक देखने को मिले, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्यों गोद में बिठाया उसको, उसके पेट में क्या कर रहा है पता नहीं, और ये इसके सर पे पता नहीं पांव क्यों रखा है। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने ये दांत बना के उसके ऊपर ये गोल गोल पृथ्वी रखी क्यों, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको पहले किसी ने बताया नहीं, है ना।
कोई उसको बताने वाला था ही नहीं। उसी प्रकार भगवान की लीलाओं को जब तक हम शुद्ध भक्तों के द्वारा नहीं समझते हैं, जब तक हमें श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक भगवान के रहस्यों को समझना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं यथा नटस्य कृति भेर विचेष्ट, जिस प्रकार नाटक कला में नट कार्य करता है तो उसकी चेष्टाओं को भी समझ। अब यहाँ से हमें ये भी याद आ रहा है, कुंती महारानी में भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना की थी कि आप तो उसी प्रकार जिस प्रकार रंगमंच में नाटक करने वाला नाटककार कार्य करता है, आपके कार्यों को कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि कुंती महारानी भगवान को बहुत बहुत याद कराती है कि ये पांडव आपके कितने प्रिय हैं, फिर भी उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। द्रौपदी से आप कितना स्नेह करते हो, फिर भी भरी सभा में उनको नग्न करने का प्रयत्न किया गया। अभिमन्यु तो आपके कितने लाडले थे, फिर भी 7-7 महारथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, वो भी अधर्म से। और छोड़िए, आपके अपने माता पिता को कंस ने कारागृह में रखकर इतनी यातनाएं थी। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सबके हृदय में रहते हो, हर एक जीव के हृदय में रहकर उसको प्रेरणा दे सकते हो। अश्वत्थामा के हृदय में बैठकर प्रेरणा किसने दी कि तुम उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाओ, वो प्रेरणा देने वाले भी आप हैं, और फिर उस ब्रह्मास्त्र से बचाने वाले भी आप हैं, सारे संकट देकर अपने भक्तों को फिर बचाने भी आ जाते हैं। आपकी ये लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि साधारण जीव तो क्या, बड़े बड़े देवता भी इन्हें समझ नहीं सकते कि आप इन लीलाओं के द्वारा क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर गजेंद्र भी ऐसे ही कह रहे हैं भगवान को, न यस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनः को हति गंतु मीरितुम यथा नतस्य कृतिभिर्वचेष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु। दुरत्यया मतलब बहुत कठिन है। जिस प्रकार से कोई नाटक कला के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी कला को समझना मुश्किल है, लेकिन आपकी जो लीलाएं हैं उसको समझना अत्यंत कठिन है। दुरत्यया भगवान भी कहते हैं, मम माया दुरत्यया, बहुत कठिन है, मेरी सहायता के बगैर मुझे नहीं समझा जा सकता, मेरी कृपा के बगैर। दुरत्य अनुक्रमण, तो इनकी भगवान की गतिविधियां, भगवान की गतियां, भगवान के कार्यों को समझना बहुत कठिन है। तो ऐसे भगवान स मतलब वही भगवान माँ अवतो मुझे संरक्षण प्रदान करे। अनुवाद देखिए, आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो धनिक भी नहीं जो पशुओं के तुल्य हैं। ना तो देवता तथा मुनि ना ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और ना ही उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी हमें याद करा रहे हैं कि ऐसी अभिव्यक्ति कुंती देवी ने भी प्रकट की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं।
जैसे भगवान ने 15.15 में बताया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेकानेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थित तत्कति न मनसा पश्यन्ति योगिना यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी बड़े बड़े योगी, देवता, संत तथा मुनि ना तो उस महान कलाकार यानी नट के स्वरूप को समझ पाए हैं, ना ही वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए हैं। वे तो फिर इस जगत के चिंतकों यथा तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए, उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हें उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को समझना जाना जा सकता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसलिए जब भगवान इस संसार में आते हैं, जो उपदेश करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु और जो बड़े बड़े भक्त होते हैं जो भगवान के संदेश को प्रचार करने के लिए संसार में आते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनके वाक्यों को श्रवण करके उसको स्वीकार करना चाहिए। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद भगवत गीता 4.9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म शमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत। अब यहाँ पर भगवान ने लिखा, जन्म कर्म शमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत। वेत्ति मतलब जानता है। यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं, न यस्य देवा ऋषयः पदम विदु, उसे बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। लेकिन भगवान कहते नहीं, जानते नहीं है, लेकिन जाना जा सकता है, जाना संभव है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म वैसे तो दिव्य हैं, परंतु एवं यो वेत्ति तत्वता, जो उसे जानता है। इसका अर्थ है कि भगवान को जाना जा सकता है, और अगर भगवान को जान लें तो क्या होगा, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति, फिर जब जीव इस देह को त्यागेगा तो दूसरा जन्म उसे नहीं प्राप्त होगा, किधर जाएगा, मामेति। कृष्ण कहते अर्जुन, मेरे पास आएगा वो, और किधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मुझे जान गया है, मेरे कर्मों को, मेरे जन्मों की दिव्यता को जान गया है। तो यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा, तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता, फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वह कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस चला जाता है। अब श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर बताया यहाँ पर कि जब तक वो मरता नहीं, भगवान ने लिखा त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति, जब वो देह को त्याग देगा तब तो दूसरा जन्म नहीं लेगा, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तब तक क्या करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, तब तक उसका कोई भौतिक कार्य रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से निकलकर आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाएगा और अपने आप को आत्मा समझकर केवल वही कार्य करेगा जो आत्मा करती है। आत्मा भगवान का अंश है और उसका एक ही कार्य है, क्या, भगवान की सेवा करना। तो वो जितने भी उसके कार्य होंगे वो कृष्ण भावना अमृत के कार्य होंगे। वो कुछ भी करेगा वो केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की बुद्धि रख के करेगा। तो इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर जब त्यागेगा तो भगवत धाम को वापस जाएगा। तो आज गजेंद्र ने कहा
कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं समझ सकते, तो मानो उसी से लगा हो कि कोई ऐसा न समझ ले कि भगवान को समझा ही नहीं जा सकता। तो आगे गजेंद्र समझाएंगे कि नहीं, भगवान को समझाया जा सकता है, और भगवान को कौन समझ सकता है वो हमें बताएंगे श्लोक नंबर 7 में। कृपया साथ रहिएगा और एक बार फिर शुरू से लेकर श्लोक नंबर 6 तक मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। श्री बादरायणी रुवाच एवं विवसितो बुद्ध्या एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोवृद्धि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परीशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात्परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्पर। कालेन पञ्चत्वमिति शुकृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनः को हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचिष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।